नमो ताहि जाते भये अरहंताति महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजू सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज सभी लोग यहां इसलिए एक साथ बैठे हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपक्रम कर सकें, अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं इस बात पर विचार कर सकें। जीवन हमारा तभी अच्छा बनेगा जब हम जीवन का मूल्य समझेंगे। हम कहते सुनते और पढ़ते जरूर हैं कि यह मनुष्य जीवन हमको बहुत दुर्लभता से मिला है, पर जिस तरह हम इस जीवन को जीते हैं उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि हमने इस चीज को सिर्फ पढ़ा सुना और जाना है पर हमने माना नहीं है। यदि हमने अपने जीवन की दुर्लभता को माना होता तो हमारी लाइफ स्टाइल कुछ और होती। जैसी हम अभी वर्तमान में अपने जीवन को जीने की पद्धति अपना बैठे हैं शायद हमारी वो पद्धति नहीं होती। एक छोटा सा बेटा मां से दो दो पैसे लेकर के गुल्लक में जमा करता है और फिर एक दिन जब उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं उससे कोई पूछे कि क्या करोगे तो बोलता अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, अभी तो प्लान करूंगा कि कैसे खर्चा करूंगा, क्या क्या चीज लाऊंगा। और अगर उतने ही पैसे माँ उसको दे देवे तो उसको प्लान नहीं करना पड़ता, फिर तो वो उन सब की चॉकलेट खरीद के ले आता है चाहे वो 100 रुपए भी क्यों ना। लेकिन वो जो गुल्लक में मैंने 100 रुपए इकट्ठे किए हैं वो जानता है कि मैंने बहुत मुश्किल से अर्जित किए हैं, उसको मुझे ऐसे आसानी से खर्च नहीं करना है। इतनी छोटी सी बात हम सब के जीवन में भी जब कभी समझ में आएगी तब जीवन की पद्धति जीने की हम जरूर बदलेंगे। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो इसके मायने हैं कि अभी हमें बात भीतर तक, बाहर बाहर से तो सबके समझ में आ जाती भैया किसके नहीं आती है, कौन इतना बुद्धू होगा, सबके समझ में आती, लेकिन भीतर जितनी गहराई में कषायों का संस्कार बैठा है उतनी गहराई में जाकर के ये बात वहां चोट करे तब वो संस्कार थोड़ा हिले और तब जीवन को अच्छा बनाने की ललक हमारे भीतर पैदा हो। एक नाविक था जो रोज नाव चलाता था, बिल्कुल सुबह सुबह भोर होने से पहले अपनी नाव किनारे लगा देता था नदी के कि यात्रियों को पार लगाएगा। एक दिन थोड़ा जल्दी उसकी नींद खुल गई, वो पहुंच गया नदी के किनारे, लेकिन अभी सुबह होने में बहुत देर थी। क्या करूं जब तक बैठे बैठे वहां नदी के किनारे, उसने एक पोटली में हाथ डाल करके देखा तो कुछ कंकर से दिखाई पड़े। बच्चे लोग शाम को आए होंगे और खेल खेल में उन्होंने पॉलीथीन के या कि किसी पैकेट में और इकट्ठे करे होंगे। उसने सोचा चलो यही करते हैं, एक पत्थर निकाल करके वो फेंकता है, क्षपाक की आवाज आती है और उतने गहरे सन्नाटे में वो आवाज उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर एक पत्थर निकालता है, फिर फेंकता है, फिर क्षपाक की आवाज आती है। सोचता है ये बहुत अच्छा है, मेरा टाइम इस तरह से आसानी से कट जाएगा। और एक 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 करके थैली में हाथ डाल करके सारे पत्थर फेंक देता है, आखिरी पत्थर उसके हाथ में। और तब तक सुबह हो जाती है, इससे पहले कि वो पत्थर आखिरी वाला फेंके उसकी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ जाती है। वो चकित हो जाता है कि अरे ये पत्थर नहीं है, ये बहुत आर्डिनरी नहीं है, ये तो कोई हीरा जवाहरात जैसा मालूम पड़ रहा है। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी, तब तक तो जितने पत्थर थे वो फेंके जा चुके थे। अगर वो चाहता तो वो जो उसने इतने सारे पत्थर फेंक दिए थे उनको लेकर के रो सकता था, लेकिन वो हम और आप जैसे विचार वाला नहीं था कि मेरे इतने सारे पत्थर मेरी अज्ञानता से जो कि हीरे की तरह कीमती थे फेंके जा चुके हैं, अब क्या, इस एक का क्या करूंगा, ऐसा विचार नहीं था उसका, पॉजिटिव था। उसने कहा एक एक वो जो बाकी बचा है वो बहुत कीमती है, वे जो सारे फेंके जा चुके हैं उनकी चिंता क्यों करूं, एक जो मेरे हाथ में है वही मेरे लिए पर्याप्त है। भैया जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि जीवन बहुत दुर्लभ है और इतने ही नहीं मेरे हाथ में है ये और शायद ये आखिरी है, इसके पहले मैंने इसको कई कई बार प्राप्त करके गंवा दिया होगा, वो मेरी अपनी अज्ञानता का रोल था, वो मेरी अपनी अज्ञानता के क्षण थे। लेकिन अब जबकि सुबह हो गई है और मैं ठीक ठीक पहचान रहा हूं कि ये बेशकीमती है, तब फिर मैं उसका सदुपयोग करूं। अगर इस तरह हमारे मन में अपने जीवन के सदुपयोग का विचार आ जावे तो हम जीवन को धीरे धीरे अच्छा बना सकते हैं। जीवन में जो हमें मिलता है उसकी हम कीमत समझें और हम उसका सदुपयोग करें। लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हमें जो चीज आसानी से मिल जाती है हमें उसकी कीमत नहीं मालूम पड़ती, जो चीज दुर्लभ है उसकी कीमत भी करना हम भूल गए और जो चीज आसानी से प्राप्त है उसकी कीमत तो हम वैसे भी नहीं। हमें कोई चाहिए बताने वाला कि ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है जीवन, इसका तुम सदुपयोग कर लो, और जीवन का सदुपयोग करने की प्रक्रिया बताने वाले बहुत से उपदेशक हैं, जिन वाणी भरी पड़ी है
जीवन के सदुपयोग के लिए, लेकिन वो सारा उपदेश हमारे लिए अपने जीवन के कल्याण के लिए जानी नहीं पड़ता कि मेरे काम का है, किताब में लिखा हुआ है मुझे यों करना चाहिए, मुझे यों नहीं करना चाहिए, किताब में लिखा है। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बता सकता हूं, रात 12 बजे भी जगा के पूछे कि किस में कल्याण है और किस में अकल्याण है, क्या जीवन का सदुपयोग है क्या जीवन का दुरुपयोग है, मैं चाहूं तो बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मेरे अपने जीवन में वो उपदेश अभी सहज रूप से आया नहीं है। जैसे सहज रूप से किसी के बिना उपदेश दिए भूख लगने पर मैं रोटी की चिंता करने लगता हूं, प्यास लगने पर पानी को खोजने लगता हूं, सांस लेने में मुश्किल होती है तो खट से बाहर निकल जाता हूं, दरवाजे वरवाजे खोल करके हवा में गहरी सांस लेता हूं, मैं किसी से ये पूछने नहीं जाता कि मुझे भूख लगाई मुझे खा लेना चाहिए ना, मुझे प्यास लगी है अब मुझे पानी पी लेना चाहिए, आपका क्या सजेशन है आप बताइए, शास्त्रों में क्या लिखा है इस बारे में, कहीं कुछ लिखा हो तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी भूख मिटाने का उपाय मैं जानता हूं, अपनी प्यास बुझाने का उपाय मैं जानता हूं, अगर सांस लेने में मुश्किल मुझे होती है तो मैं जानता हूं कि कहां मैं ठीक से सांस ले सकता हूं, लेकिन मेरे अपने जीवन के कल्याण के बारे में इतना ही आसान रूप से, इतना ही स्वाभाविक रूप से मेरे मन में कभी विचार नहीं आता है। इतना स्वाभाविक जब तक हमारे भीतर धर्म नहीं होगा, जितना स्वाभाविक रोटी पानी और हवा की जरूरत मालूम पड़ती है, इतना ही जरूरी अपने जीवन में जब तक कि उपदेश नहीं होगा तब तक भी हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। क्यों नहीं है हमारे जीवन में इतना सहज, इतना स्वाभाविक अपने जीवन के कल्याण का रास्ता, क्यों हमें मुश्किल मालूम पड़ता है, जबकि हमें यह मालूम पड़ गया है कि यह जीवन दुर्लभ है, और जबकि हमें यह मालूम पड़ गया है कि यह मेरा अपना जीवन जो मेरे पास है वो लास्ट है, ये मान के चल रहा हूं, इसके बाद भी असल में कहीं ना कहीं कोई और बात है जो मुझे बाधक बनती है, वो है मेरे अपने मन का संस्कार। जरा इस पे विचार कर लेते हैं कि मेरे मन में कौन कौन से संस्कार पड़े हुए हैं ऐसे, और मैं उनके लिए तोड़ने के लिए क्या प्रयास करूं, क्योंकि इतनी बातें सब जानते हैं जितनी अपन ने अभी करी हैं, लेकिन मेरा ही मन मेरे विपरीत चल सकता है ऐसा हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, मेरी चेतना के विरुद्ध मेरा मन खड़ा हो जाता है ये हम कभी नहीं सोच पाते। हम तो सोचते हैं हमारे मन में जो आ रहा है वही हमारे लिए कल्याणकारी है, और हम अपने मन के मुताबिक जीवन को गति देते रहते हैं, जो मन में आता है सुबह से शाम तक वो करते हैं, जो करना चाहिए वो मन में बहुत कम आता है तो उसे हम दबा देते हैं, वो अंतःकरण की आवाज कभी कभी सुनाई देती है, जब उसको हम सुनना बंद कर देते हैं तब इतनी धीमी हो जाती है कि इस बाह्य मन के चलते वो आवाज फिर सुनाई देना भी बंद हो जाती है, बचपन में सुनाई देती है जब हम बहुत इनोसेंट होते हैं, तब मां कितने ही कहे बेटा नहीं मानता जब तक कि अंतःकरण गवाह नहीं देता तब तक, फिर उसके बाद तो अंतःकरण कितने भी चीख चिल्ला करके और हमें इशारा कहे कि वो नहीं, वो चीज नहीं, हमारा मन कहता है कि तुम नहीं जानते, तुम बहुत भोले भाले हो, मैंने दुनिया देखी है, जिसमें 4 पैसे का लाभ है वो करूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। जिसमें मेरा संसार सधेगा वो संबंध जोड़ूंगा, बाकी किसी संबंध की मुझे कोई यहां जरूरत नहीं है। बड़ा मजा है हमारे इस मन का, हमने इसको वर्षों से, शायद मेरे ख्याल से तो वर्षों से हमने तपस्या करके, मैं तो मुझे कई बार ऐसा लगने लगा, हमने शायद वर्षों तपस्या करके मन को ऐसा डायरेक्शन दिया है, ऐसा संस्कारित किया है। अब बताइएगा कि ऐसे मन को लेकर के हम संसार के किसी कोने में चले जाएं, धर्म उपदेश की सभा में बैठ जाएं, भगवान के सामने और माथा पटक देवें, तब भी ऐसे मन को लेकर के कभी भी हम अपने जीवन का सदुपयोग तो कर ही नहीं सकते। क्या करें फिर? ये भी समझ में आ गया कि मेरा मन बहुत मनमानी करता है। इस मन के दो ही ढंग हैं, कभी राग करता है कभी द्वेष करता है। झट से इसे हम समझ लें कि ये करता क्या है। ये सिर्फ दो ही डायरेक्शन में जाता है, तीसरी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये अपना, ये पराया, ये अच्छा ये बुरा, वो भी कौन सा क्राइटेरिया है? जो मेरे अपने लिए अच्छा लगे वो अच्छा, जो मेरे लिए बुरा लगे वो बुरा। मेरा जिससे कल्याण हो वो अच्छा, मेरा जिससे अकल्याण हो वो अच्छा नहीं, ऐसा मेरा मन कभी नहीं सोचता। ऐसा मैंने संस्कार ही नहीं डाला। अपने बेटे को भी ऐसे ही संस्कार डालते हैं अपन, देख जिसमें तेरा कल्याण हो वो करना, मेरे बताए मत चलना, दुनिया के रास्ते पर मत चलना, जो तेरे कल्याण के लिए उस रास्ते पर चलना। ऐसा किसी पिता ने अपने बेटे के बड़े होने पर कभी साथ में प्रेम से बिठा के कहा? किसी मां ने अपनी बिटिया को कहा कि तुम वो सब करना जिससे तुम्हारा कल्याण हो, वो सब मत करना जिससे कि संसार बढ़े? संसार बढ़ता है मेरे अपने मन के राग द्वेष के संस्कार से, और संसार घटता है मेरे राग द्वेष के घटाने से, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चर्चिल लंदन के प्रधानमंत्री थे, उनका एक 2 बजे से लेक्चर होना था, कोई दिन फिक्स था। वे 1 बजे निकलते हैं अपनी कार लेकर के, 20 मिनट का रास्ता है, सोचा था थोड़े पहले पहुंच जाएंगे इसलिए 1 बजे निकल गए, लेकिन 1.5 किलोमीटर गए होंगे और कार खराब हो गई। कार वहीं छोड़ी, सामने चौराहा था, टैक्सियां बहुत खड़ी थी। टैक्सी वाले से कहा कि मुझे छोड़ दो, फलाने जगह जाना है। वो कहता कि अभी नहीं। अरे मैं पैसे दूंगा। बोलता सब रखो अपने पास पैसे वैसे, अभी नहीं जा रहा हूं। जितने टैक्सी वाले से पूछे वो कहा अभी नहीं जा रहा हूं। बड़ा आश्चर्य चर्चिल को। तो एक टैक्सी वाले से पूछा कि क्यों नहीं जा रहे? बोले बुद्धू तेरे को नहीं मालूम चर्चिल का लेक्चर होने वाला, बिना उसके सुने तो जाऊंगा ही नहीं। अब वो क्या जाने कि यही चर्चिल है, पर उसको ये क्रेज है कि चर्चिल का लेक्चर होने वाला है और मैं टैक्सी तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक कि लेक्चर पूरा नहीं हो जाएगा, अभी मैं धंधा वंदा नहीं करूंगा। चर्चिल बड़े खुश कि कितना क्रेज है मेरे अपने लेक्चर का, लेकिन अकेले खुश होने से काम नहीं चलेगा, पहुंचना तो है। थोड़ी देर रुक करके जब देखा कि अब तो बिल्कुल टाइम हो ही गया है, कोई मानने तैयार नहीं है, धीरे से $1 निकाला और एक रिक्शे वाले के हाथ पे रखा कि सुन $1 दूंगा पूरा, चलता है क्या? बोलता बैठ। बैठ गए चर्चिल, और जब रिक्शा चला तो उससे पूछा कि क्यों अब नहीं सुनना? तो बोलते गोली मारो चर्चिल के भाषण वाषण को, $1 मिल रहा है, कम क्या है, कम है क्या? अब चर्चिल दुखी है। जब वो ये कह रहा था कि तुम्हारा, उसे तो मालूम नहीं कि किसका, चर्चिल का लेक्चर होने वाला है और मैं उसका वेट कर रहा हूं, मैं कोई अपना धंधा वंदा नहीं करूंगा, तब बड़े प्रसन्न थे ये सुनकर के, और अगले क्षण कि क्या रखा है भाषण में, $1 ज्यादा कीमती है। फौरन मन संक्लेशित हो गया, इतना ही जानता है मन, इससे ज्यादा नहीं जानता मन। हमने मन को इतना ही संस्कार दिया है, इससे ज्यादा दिया ही नहीं। आप देख लीजिएगा, 24 घंटे देख लीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि श्रावक से लेकर के साधु के जीवन तक आंख उठा के देख लीजिएगा। एक इंद्री जीव से लेकर के संगी पंचेंद्री तक, देव गति से लेकर के तिरंच मनुष्य और नरक गति तक देख लीजिएगा। कोई है जो कि अहंकार और संक्लेश इन दोनों से मुक्त हो? बहुत थोड़े से क्षण साधु के जीवन में हो सकते हैं कि जब वो इस तरह के राग और द्वेष के संस्कार को तोड़ करके और दोनों स्थितियों में समान रह सके। बहुत थोड़े से श्रावक ऐसे होंगे जो दोनों स्थितियों में संतोष रख सकें। मन को इस तरह का संतुलन देना, मन को इस तरह समायोजित करना, इतना अगर हम सीख लेवे दोनों स्थितियों में, और ज्यादा कोई बहुत कठिन बात नहीं कह रहा हूं। मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये चीज जिसमें मैं हर्ष मान रहा हूं मेरे राग की वजह से है, और जिसमें मैं दुख मान रहा हूं मेरे देश की वजह से, और कोई वजह नहीं। जब जब मुझे जिन चीजों की प्राप्ति में सुख हो तो समझना कि इनमें मेरा राग है, और जब जब जिन चीजों की प्राप्ति में मुझे दुख हो और अप्राप्ति में भी दुख हो तो समझना कि इन चीजों से मेरा द्वेष है। इतना ही तो है, लेकिन इसको ठीक ठीक समझ करके हम अपने राग को दिशा दें और द्वेष से बचें। द्वेष को दिशा नहीं दी जा सकती, राग को दिशा दी जा सकती है। राग एक सांसारिक होता है और एक पारमार्थिक होता है। हम कौन से राग से प्रेरित होकर यहां बैठे हैं? धर्मानुराग से प्रेरित होकर ना बैठे हैं, और कोई वजह है क्या? चार बातें धर्म की सुनेंगे, पता नहीं कौन सी ऐसी बात जो मेरे अपने जीवन के लिए काम आ जाएगी, और ना सही कुछ समझ में नहीं आएगा तो कम से कम संसार के पाप से घंटे भर बस तो जाएंगे। चलो बैठते हैं, सुनते हैं। ये ना राग है। अगर हम अपने मन को इस राग के प्रति जागृत कर दें, धर्मानुराग के प्रति हमारा मन जागृत हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में धर्मानुराग के क्षणों को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जावे, तो बताइएगा फिर संसार का जो राग है वो छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं मन लग जावे तो फिर बाकी जगह से मन अपने आप हट जाता, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रखता। मन को मन से तौलिए, दो मन कबहू ना हो। एक मन इस तरफ रखो तराजू पे, एक मन इस तरफ रखो, तौलो कितना हुआ? एक ही मन। मन को मन से तौलिए, दो मन कबहू ना हो। एक मन अगर हमारा धर्म में लग गया है तो मानिएगा फिर हमारा संसार अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। इतनी सी टेक्निक है, इतनी सी थोड़ी सी कारीगरी है, जिसको कहें ये आर्ट है। जब जब मेरा मन संसार की तरफ जाए, मैं उसे जबरदस्ती नहीं, उसे समझा बुझा कर, बहुत प्रेम से समझा के कि क्या होगा इसमें, इसका तो कई बार अनुभव कर लिया, जरा इसको भी देख लें अपन। और ऐसे हम अगर उसको डाइवर्ट करें, और लेकिन ये कंटिन्यूटी बनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राग और द्वेष का संस्कार इतना इतना प्रबल है कि यदि हम थोड़ी देर को वो तोड़ना चाहें तो टूटा हुआ मालूम पड़ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर ज्यों का त्यों। जैसे कि पानी पड़ता है मिट्टी पर, लगता है कि सौंधी सौंधी गंध आ रही है और गीलापन आ गया है, ऐसे ही मन पर जब उपदेश पड़ता है तो थोड़ा भीगापन आ जाता है, थोड़ी सौंधी गंध आने लगती है, बड़ा सब कुछ प्लेजेंट फील होने लगता है, लेकिन उसके बाद जैसी हवा लगती है
फिर ज्यों की त्यों मिट्टी फिर सूख गई, फिर कड़ी हो गई, दरारें तक पड़ गई। हां ऐसे ही जीवन के साथ। इसलिए ये प्रबल संस्कार जितना राग द्वेष का है उतना ही प्रबल संस्कार मुझे राग को दिशा देने का भी करना पड़ा। और कल पर टालने की जो आदत है भलाइयों को उसको छोड़ना पड़ेगा। ये मन की टेक है, वो जानता है कि जरा पोस्टपोन करो, जो अच्छी चीजें हैं उनको पोस्टपोन करो। ये हमने बहुत सीखा है, कई कई वर्षों हमने इसका अभ्यास किया, करवाया जाता है हमें। कभी भी मां अपने बेटे की भली चीजों को पूर्ति करने में उतनी उतावली नहीं करती जितनी कि बुरी चीजों की प्राप्ति के लिए डांट टपट करती है। बुरी चीजों को तुम्हें नहीं करना चाहिए इसके लिए डांट टपट करती, लेकिन भली चीजों की पूर्ति के लिए उतावली नहीं करती। वो कहता मंदिर जाऊंगा, अभी ठहरो हम जाएंगे जब परमा के साथ चलना। अभी कैसे जा रहे थे, कौन के साथ जा रहे हो, पढ़ो थोड़ा सा अपना। अरे वाह, ये ना किया है मन को हमने इस तरह से। भलाइयों के लिए कभी कभी हमने अगर कहा है तो हमने हमेशा कल पर पोस्टपोन कर दिया है, और हमने कंटिन्यूटी को ब्रेक किया है। दो चीजें जरूरी हैं अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो, भलाइयों की तरफ जाते हुए मन को निरंतरता देनी चाहिए और बुराइयों को पोस्टपोन करना चाहिए, भले काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। दो छोटे छोटे से उदाहरण और बात एकदम स्पष्ट हो जाए, कोशिश तो यही है। पर भैया अकेले बुद्धि में स्पष्ट होने से काम नहीं चलेगा, हृदय में स्पष्ट होनी चाहिए, वो मेरे बस का नहीं। मैं तो बुद्धि में स्पष्ट कर देता हूं, इसके बाद का काम आपका है। आपको हृदय में जिस दिन भी स्पष्ट हो जाए उस दिन काम बन जाए, पर जरूरी नहीं है कि बुद्धि में स्पष्ट होने पर हृदय में स्पष्ट हो ही जाए। पर कोशिश करने में तो कोई हर्जा नहीं है। एक सर्कस दिखाने वाला था, वो अपनी जीवन साथी को एक बोर्ड पर कैनवास पर खड़े कर देता था, एक आउटलाइन खींच दी जाती थी और वो यहां से चाकू फेंकता था और चाकू जाकर के सीधे वहां उस लाइन के अलांग चुपते चले जाते थे। रोज का काम था, कभी भी एक भी चाकू नहीं चूका कि उसके जीवन साथी को लग जाए। इतना हैबिचुअल था वो, इतना प्रैक्टिस थी उसकी। भैया जिस चीज का जितना बढ़िया अभ्यास होगा वो चीज उतनी आसान हो जाएगी, और इतना ही नहीं वो चीज हमें और दूसरी चीजों को करने से रोकेगी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों में बहुत तेजी से झगड़ा हो गया, इतनी तेजी से कि उसने सोच लिया कि अब ये रहेगी या कि मैं। जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं, और उसने उपाय भी सोच लिया कि करना क्या है, ऐसे अगर मारूंगा तो चार लोगों के बीच पता लगेगा, हथकड़ी बंधेगी, जेल जाना पड़ेगा। आसान उपाय, मन सारे उपाय ढूंढ लेता है। बेईमानी के उपाय मन जितने अच्छे से जानता है उतना और कोई नहीं जानता, उसे अभ्यास है। हमने अभ्यास वैसा ही दिया है, किसी और ने हमारे मन को ऐसा बना दिया हो ऐसे धोखे में नहीं रहना। ये सब हम लोगों ने अपने लिए स्वयं तैयारी की है, और एक एक दिन नहीं वर्षों कई जिंदगी गुजर गई ये तैयारी में हमारी। और उसने विचार कर लिया कि करना क्या है, एक ही चाकू गलत फेंकना है और काम पूरा हो जाएगा, लोग भी समझेंगे कि जिंदगी हो गई, भाई तब ये चूक गया होगा, बस कोई संदेह भी नहीं कर पाएगा। और दूसरे दिन वो पहुंचता है और एक के बाद एक चाकू फेंक रहा है और पसीने पसीने हो रहा है, बहुत परेशान है, लोग देख करके चकित हैं कि इसको क्या हुआ, इतने इजीली फेंकता था ये और आज तो बहुत बहुत निशाना साथ साथ के फेंक रहा। वैसे तो ऐसे ही फेंकते चले जाता था इधर से उधर से उधर से, और सब एकदम ठीक लगते थे और आज तो बिल्कुल एक 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 निशाना साध के इसको हो क्या गया, और पसीने पसीने हो रहा। बाद में जब बाहर निकला तो उससे पूछा कि क्या हुआ था, उसने कहा कि कभी जीवन में मरते समय बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और मरने से पहले वो इस घटना को लिख करके मरा कि उस दिन मैंने एक भी चाकू ठीक निशाने पर नहीं फेंका, हर चाकू पर कोशिश की कि ये जाकर लग जाए, हर चाकू पर मैंने कोशिश की कि ये अब लग जाएगा, ये नहीं लग पाया ये लग जाएगा, ये नहीं लगा ये लग जाएगा, लेकिन एक भी तो नहीं चूका। इतना प्रबल संस्कार था, अच्छाइयों का इतना ही प्रबल संस्कार हो जाए तो बुराइयां कितने ही जोर से घेरे लेकिन कर नहीं पाएंगे हम बुरा। लेकिन मजा यह है कि बुराइयों का संस्कार इतना प्रबल है कि चाह कर भी एक भी काम अच्छा नहीं कर पाते, जाते हैं अच्छा करने करके आ जाते हैं, वही राग द्वेष। नरक में तो कहते हैं कि सामने देख करके कि ये अवधि ज्ञान से जान करके ये मेरी मां है, अरे वाह अब तो मैं मिलूंगा, पैर छू लूंगा इससे, मुझे बहुत प्यार करती थी। और जैसे ही पास में पहुंचता है और अवधि ज्ञान मिथ्या होता है, उसके माध्यम से क्या सोचता है कि ये वही है, ये क्या करती थी जब मैं बहुत छोटा था, समझता नहीं था, उस समय हाथ में कुछ काला काला लगाती थी, मेरी आंख फोड़ना चाहती थी। अभी बताता हूं, सोच के जा रहा था कि मैं इसका भला करूंगा, लेकिन नरक का संस्कार इतना प्रबल है कि वो उसको उस भले संस्कार को तोड़ करके बुरा ही करने को प्रेरित करता है। भैया ऐसा तो नहीं कि हमने भी अपने जीवन में ऐसे ही नरक बना लिया हो, हमने शायद अपने जीवन को खुद नरक बना लिया है अपने प्रबल अभ्यास से, बुरे कामों के प्रबल अभ्यास से। जब हम भला करने जाते हैं तब भी हम भला नहीं कर पाते और हम पोस्टपोन भी बहुत करते हैं भलाइयों को, बुराइयों को सहसा कर लेते हैं, अनजाने में कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद ऐसा हो गया, ऐसा कहते हुए कर लेते हैं कि क्या करें। मैं कहने नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि अभ्यास वही था। मैंने कई लोगों को देखा कि जिनके अपशब्द बोलने की आदत होती है, भी बहुत भली बात कर रहे होंगे तब भी उसके बीच में एक आध अपशब्द आ जाएगा। क्यों? इतने हैबिचुअल हो जाते, एक आध गाली आई जाएगी, हां इतना हैबिचुअल हो जाते। इस चीज को भी हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे भीतर वो जो बुरे संस्कार हैं उनको मैं कितने आसानी से कर लेता हूं, उनको अब मुझे पोस्टपोन करने की आदत डालनी चाहिए, और जो भले विचार मेरे अंदर क्षण भर को आते हैं मैं उनको कितनी जल्दी हटा देता हूं और उसको फॉलो ही नहीं कर पाता हूं। ऐसा विचार हम अपने जीवन में करें। एक और छोटा सा उदाहरण, मंदिर में बैठे हुए हैं सारे लोग, जैसे अपन बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है, दान की बहुत बड़ी चर्चा चल रही, टॉलस्टॉय ने लिखा है, टॉलस्टॉय की कहानी है ये, बहुत फेमस इंग्लिश के राइटर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मंदिर में बैठे हैं लोग और एक कोई उपदेशक आया है, दान पर बहुत चर्चा कर रहा है, जिसने आज तक कभी दान नहीं दिया उसके मन में भी एक बार उस उपदेश को सुनकर के आया कि मैं दान दूं, और उसने सोचा कि अब जब लोग दान मांगने आएंगे प्रवचन के जस्ट बाद, तब मैं उनको $100 दे दूंगा। $100, जैसे ही उसने अपने मन में सोचा कि $100, भीतर बैठा हुआ था मन, उसने कहा करते क्या हो, $100 बहुत होते हैं बाबा, ऐसे कैसे, अब प्रवचन नहीं सुन रहा वो, अब तो वो ये कह रहा है कि $100 बहुत होते हैं, ये कैसे सोच लिया। कोई बात नहीं, अभी कौन दिया है अपन ने, अभी तो आए ही नहीं है वो, 50 कर लो, किसी ने नहीं सुना, मन समझाता है 50 कर लो, 50 कर लिए लेकिन फिर भी ज्यादा मालूम पड़ते हैं, 25 कर लिए फिर भी ज्यादा मालूम पड़ते हैं। 5 मिनट के बाद वो उस धर्म सभा को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, क्यों उठ के चला गया,
मालूम उससे जब पूछा गया कि तुम इतने बढ़िया प्रवचन से जो प्रभावित हुए थे और अचानक उठ के कौन चले गए, उसने कहा सुनो $100 देने का मन हुआ था, 50 तक बात आ गई थी, 25 पर आकर के भी नहीं रुकी, 10 और 5 पर आके भी नहीं रुकी, मैंने सोचा था कि और होगा ना होगा तो $1 तो दे दूंगा, लेकिन जब जब मेरे मन में यह आया कि डालूंगा तो सिक्का एक का और उठा लूंगा दो का, तब मैं उठकर के बाहर निकल गया कि अब तो बहुत 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 बड़ा अपराध हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे कि डालूंगा तो 50 पैसे का सिक्का और 1 रुपए का उठा लूंगा। ऐसा हम भलाइयों को जिस क्षण मन में आवे, इस उदाहरण से यह सीख लेना कि जिस क्षण आवे कि $100 दे दिए खत्म, बाद बात को नहीं, बाद को तो ये मन बहुत कच्चा पड़ जाता है, अच्छे काम करने में बहुत कच्चा पड़ जाता है, ये बुरे काम करने में बहुत पक्का है। इसलिए इस मन की इस टेक को तोड़ने के लिए यही उपाय है कि जिस क्षण अच्छा करने का मन आए, इस क्षण उसी क्षण फौरन कर लें, फिर बात को संकल्प ले लें तुरंत कि हां ठीक अब मेरा यह संकल्प हो गया, भैया इस तरह इंतजाम तो करना पड़ेगा अपने जीवन का, अपने हाथ से जो हमने स्वरूप बना रखा है, जो हमने अपने जीने की पद्धति बना रखी है, उस पर एक बार फिर से विचार करके और उसको कोई बहुत अच्छी दिशा दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं तो अपना कल्याण होगा। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपन आज नमोकार करते हैं। ओ नमो अरिहंतानम् ॐ नमो
लोग
जन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।